एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास, बहुत चर्चित उपन्यास पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा उपन्यास जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कह सकते हैं एक पूरी पीढ़ी के जज्बातों का दस्तावेज बन गया।
आप बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती जी के गुनाहों का देवता की, है ना?
बिल्कुल,
गुनाहों का देवता। नाम सुनते ही जैसे मन में एक अजीब सी कसक उठती है, प्रेम, दर्द, आदर्श और शायद एक गहरा पछतावा भी।
सही कहा। और इसके लेखक धर्मवीर भारती जी, जिनका जन्म 1926 में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ, वो तो आधुनिक हिंदी साहित्य के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं।
हाँ, उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के मतलब उस बदलते दौर में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। नई कविता, नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे।
बिल्कुल, एलो दौर था जब साहित्य सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बल्कि किरदारों के मन की उलझनों, उनके अंदर क्या चल रहा है उसको भी खंगाल रहा था। और भारती जी तो कवि, नाटककार, उपन्यासकार, संपादक, हर रोल में कमाल थे।
और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि गुनाहों का देवता 1949 में छपा था। तब भारती जी सिर्फ 23 साल के थे।
सोचिए जरा, 23 साल की उम्र, आज़ादी की ठीक बात का वो माहौल, एक नया देश, समाज बदल रहा था, युवा पीढ़ी अपनी पहचान ढूंढ रही थी।
हाँ, और उस वक्त प्रेम, नैतिकता, इन सब पर इतनी खुलकर, इतनी बेबाकी से लिखना यकीनन बहुत बड़ी बात रही होगी।
हाँ, इसीलिए शायद उस समय कुछ लोगों ने इसे बड़ा साहसिक माना, कुछ ने विवादास्पद भी कहा।
लेकिन देखिए, वक्त ने साबित कर दिया कि ये कोई मामूली किताब नहीं थी। आज तो ये एक कल्ट क्लासिक है, खासकर युवाओं में तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी एक अलग ही जगह बनी हुई है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उपन्यास के जो दिल को छू लेने वाली कहानी है, इसके किरदारों के मन में जो उथल पुथल मची है और जो गहरे साहित्यिक संदेश इसमें छिपे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें। कहानी के अहम मोड़, किरदारों का सफर और वो सवाल जो ये उपन्यास आज भी हमसे पूछता है।
तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की दुनिया में। इलाहाबाद का वो माहौल, प्रोफेसर शुक्ला का घर, जो कहानी का जैसे सेंटर पॉइंट है, यहीं हम मिलते हैं अपने मुख्य किरदारों से।
सबसे पहले चंद्र कुमार, एक बहुत होनहार, भावुक, आदर्शों में जीने वाला रिसर्च स्कॉलर।
अनाथ है और प्रोफेसर शुक्ला ने उसे अपने बेटे की तरह ही पाला पोसा है, अपना सहारा दिया है।
और फिर हैं प्रोफेसर साहब की बेटी सुधा।
सुधा, जिंदा दिल, प्यार करने वाली, और चंद्र के लिए तो जैसे वो एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन।
उनके बीच को जो रिश्ता है वो टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं, वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है। एक दूसरे की सोच का बहुत सम्मान करते हैं, घंटों बातें होती हैं, एक गहरी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बॉन्डिंग है उनमें, एक मासूमियत है।
और चंद्र के मन में सुधा के लिए सिर्फ लगाव नहीं है बल्कि एक पूज्य भाव है। वो उसे देवी की तरह मानता है, बिल्कुल पवित्र।
हाँ, ये जैसे उनकी जिंदगी का वो गोल्डन पीरियड था, दुनिया की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उनसे एकदम दूर, एकदम अछूता।
और यहीं इसी पूज्य भाव में कहानी का असली पेच फंसा है। चंद्र का आदर्शवाद, इतना ज्यादा आदर्शवाद कि वो असलियत से टकराता है और फिर टूट जाता है।
सवाल यही उठता है कि जब आप प्रेम को इतना ऊंचा दर्जा दे देते हैं, देवी देवता बना देते हैं, तो क्या वो इंसानी रिश्तों की जो जमीनी हकीकत है उसे झेल पाता है?
और कहानी में मोड़ तब आता है जब खुद प्रोफेसर शुक्ला, जो चंद्र और सुधा के रिश्ते की गहराई कुछ समझते हैं, वो उनके विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं।
हाँ, समाज के लिहाज से भी ये सही लगता है। सुधा के मन में भी कहीं ना कहीं ये इच्छा दबी हुई है और प्रोफेसर साहब तो चाहते ही हैं, सब कुछ सही जा रहा था।
लेकिन यहीं चंद्र वो फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है, वो मना कर देता है।
मना कर देता है? और उसका तर्क सुनिए। तर्क ये कि उनका रिश्ता इतना पवित्र है, इतना दिव्य है कि शादी के संसारिक बंधन में बंध कर
वो मैला हो जाएगा।
मतलब शादी से रिश्ता मैला हो जाएगा?
हाँ, उसका कहना था कि पति बनकर वो उस उपासक के पद से गिर जाएगा और सुधा की जो देवी वाली इमेज है वो भी टूट जाएगी। वो इसे एक महान त्याग की तरह पेश करता है।
पर क्या ये वाकई महानता थी, या फिर ये अपने ही बनाए आदर्शों के नीचे दबकर इंसानी भावनाओं से मुंह मोड़ना था? यहीं पर वो टाइटल गुनाहों का देवता सही लगने लगता है।
ये गुनाह किसी बुरी नीयत से नहीं हुआ, ये एक भटके हुए सदाचार का, एक मिसगाइडेड वर्चू का नतीजा था, एक ऐसी नेकी जो तबाही ले आई। और सबसे दुखद बात क्या है कि सुधा भी शायद चंदर के लिए अपने गहरे प्यार की वजह से या उस समय की सामाजिक मजबूरियों के कारण वो इस अजीब से तर्क को मान लेती है।
हाँ, वो शायद इसे चंदर की महानता ही समझ लेती है। उसे अंदाजा ही नहीं होता कि इस तथाकथित महानता की कीमत उसे अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी।
इस इनकार के बाद जो होता है वो वाकई दिल तोड़ देता है। प्रोफेसर शुक्ला चंदर के फैसले का सम्मान करते हुए सुधा की शादी कैलाश नाम के एक दूसरे लड़के से तय कर देते हैं।
और सुधा की विदाई वो चंदर के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। पहली बार उसे अपनी गलती का, अपने नुकसान का भयानक एहसास होता है।
हाँ, वो एकदम अपराध बोध, अकेलेपन, पछतावे की ऐसी गहरी खाई में गिरता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है।
उसे लगता है कि जिस स्वर्ग जैसे रिश्ते को, जिस सपने को वो बचाने चला था, उसी कोशिश में उसने दोनों के जिंदगियां तबाह कर दी। वो मासूमियत, वो स्वर्ग, सब खत्म।
यहाँ से चंदर का एक तरह से पतन शुरू होता है। वो पहले वाला पूज्य भाव रखने वाला भक्त नहीं रहता, बल्कि एक अपराध बोध से भरा इंसान बन जाता है। सुधा की यादें हर वक्त उसके पीछे साइड की तरह लगी रहती हैं।
और वो इस खालीपन को भरने के लिए, शायद कोई रास्ता ढूंढने के लिए, दूसरे रिश्तों में सहारा तलाशता है।
हाँ, दो और महिलाएं आती हैं उसकी जिंदगी में, है ना?
हाँ, लेकिन दोनों जैसे अधूरे जवाब लेकर आती हैं। एक है बिनती, एक शांत सीधी साधी लड़की जो मनी मन चंदर को पसंद करती है।
चंदर उससे सिलाई भी कर लेता है शायद, ये सोच करके, चलो एक पारंपरिक जिम्मेदारी वाला रिश्ता है, इसमें शायद सुकून मिल जाए।
बिल्कुल, बिनती जैसे उस घरेलू कर्तव्य वाले प्यार का प्रतीक है जिसे समाज में मान्यता मिलती है। लेकिन चंदर का मन
वहां लगता ही नहीं, वो इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाता, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिनती के लिए अपनी ड्यूटी तो करना चाहता है, पर दिल कहीं और ही है। फिर आती है पम्मी।
पम्मी तो बिनती से एकदम अलग है।
हाँ, बिल्कुल उलट। मॉडर्न, वेस्टर्नाइज्ड, अपनी भावनाओं को लेके ज्यादा बिंदास। पम्मी के साथ चंदर का एक पैशनेट, एक फिजिकल रिश्ता बनता है। वो पहलू जो उसने सुधा के साथ कभी सोचा भी नहीं था।
तो एक तरफ पारंपरिक कर्तव्य और दूसरी तरफ आधुनिक खुलापन और शारीरिक आकर्षण, पर नतीजा क्या निकलता है?
नतीजा सिफर, वही खालीपन। न बिनती का साथ उसे वो सुकून दे पाता है जिसकी उसे तलाश है, न पम्मी का जुनून उसके अंदर के दर्द को भर पाता है। सुधा की जगह और खाली लगती है।
ये रिश्ते उसे कोई छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि उसके अपराध बोध को और गहरा कर देते हैं और उलझा देते हैं।
यही भारती जी का वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद इतना प्रभावी ढंग से सामने आता है।
मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद मतलब किरदारों के मन की गहराइयों में उतरना।
हाँ, कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये दिखाती है कि किरदारों के अंदर क्या चल रहा है। उनकी सोच, उनके डर, उनकी अधूरी इच्छाएं, हम चंदर के मन के हर कोने को जैसे देख पाते हैं। उसकी उलझने, उसके तर्क, उसका पछतावा।
और वो अनजाने में ही अपनी तबाही का कारण बन जाता है, वही गुनाहों का देवता। आदर्शवाद और असलियत का टकराव, अपराध बोध, खुद को जानने की कोशिश, ये सब विषय बहुत ताकत से उभरते हैं।
और दूसरी तरफ सुधा का सफर, उफ, उसका तो सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। वो जैसे त्याग और खामोश दर्द की जीती जागती तस्वीर बन जाती है।
शुरुआत में वो कितनी जिंदा दिल थी, मासूमियत और प्यार से भरी हुई।
हाँ, और उसकी इच्छा भी कितनी सीधी साधी, कितनी मानवीय थी, चंदर से शादी करना। लेकिन चंदर के ऊंचे अव्यवहारिक आदर्शों की वेदी पर उसकी इस छोटी सी ख्वाहिश की बलि चढ़ा दी गई।
उसका पूरा जीवन एक घुटन में, एक इंतजार में बीतता है। अपनी शादी में वो कभी खुश नहीं रह पाती, वो धीरे धीरे जैसे मुरझा जाती है,
जैसे कोई खिला हुआ फूल वक्त से पहले ही सूख जाए। ये सिर्फ सुधा की कहानी नहीं, ये उस दौर की बहुत सी औरतों की कहानी भी हो सकती है। समाज की उम्मीदों का बोझ, अपनी इच्छाओं को दबाकर जीने की मजबूरी।
हाँ, ये पहलू भी सुधा के किरदार से साफ झलकता है। और प्रेम कितना पेचीदा हो सकता है ये भी दिखता है।
और जो दूसरे पात्र हैं, जैसे प्रोफेसर शुक्ला, वो कितने अच्छे पिता हैं, चंदर के लिए भी संरक्षक जैसे हैं, पर अनजाने में वो भी इस ट्रेजेडी का हिस्सा बन जाते हैं।
हाँ, वो चंदर के मन की उलझन को, उसके उस आदर्शवादी भ्रम को समझ ही नहीं पाते।
और बिनती और पम्मी, वो सिर्फ दो औरतें नहीं हैं, वो जैसे जिंदगी के वो रास्ते हैं, प्रेम के वो रूप हैं, जिन्हें चंदर अपना नहीं पाता या ठुकरा देता है।
बिल्कुल, ये चंदर के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को और साफ कर देते हैं। और एक बार और, विश्वासघात, चंदर सिर्फ सुधा के प्यार को ही नहीं ठुकराता,
बल्कि प्रोफेसर शुक्ला के भरोसे को भी तोड़ता है, जिन्होंने उसे बेटे की तरह प्यार दिया, अपनी बेटी के लिए सबसे काबिल समझा।
कहानी का अंत उतना ही दर्दनाक है जितना इसका पूरा सफर।
हाँ, सुधा की तबीयत बिगड़ती जाती है, वो जैसे अंदर ही अंदर घुल रही होती है। दिल टूटने से, या शायद किसी ऐसी बीमारी से जिसका नाम ना हो, वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ती है।
और फिर वो आखिरी लम्हा,
अपने आखिरी वक्त में सुधा सिर्फ चंदर को याद करती है, उसे ही पुकारती है। लेकिन जब तक चंदर को खबर मिलती है, जब तक वो पागलों की तरह भागता हुआ पहुंचता है,
तब तक
देर हो चुकी होती है।
हाँ, बहुत देर, सुधा जा चुकी होती है।
और वहीं सुधा के शांत शरीर के पास खड़े होकर चंदर को वो सच्चाई दिखाई देती है जिससे वो हमेशा भागता रहा, एक भयानक तोड़ देने वाला एहसास।
बिल्कुल, उसे शीशे की तरह साफ हो जाता है कि उसकी वो सारी पवित्रता, उसकी भक्ति, उसका वो महान बलिदान सब झूठ था, सब उसके अहंकार का, उसके इंटेलेक्चुअल गुरूर का एक ढोंग था।
उसने सुधा को बचाया नहीं था, उसने अपने आदर्शों के लिए सुधा की बलि दी थी।
हाँ, वो उसका उपासक नहीं, उसका हत्यारा था, उसका विनाश करने वाला था। और उसी पल वो उस टाइटल को जो उसके कामों ने उसे दिया था, उसे पूरी तरह अपना लेता है, गुनाहों का देवता।
भारती जी की जो लिखने की शैली है वो इस दर्द को और गहरा कर देती है। उनकी भाषा में गजब की लय है, एक काव्यात्मकता है, गद्य होते हुए भी कविता जैसा असर। सही कहा, काव्यात्मक गद्य, वाक्य सीधे दिल में उतरते हैं।
और कहानी कहने का अंदाज भी बहुत खास है।
थर्ड पर्सन नैरेटर है, लेकिन ज्यादातर हम चंदर के नजरिए से ही सब कुछ देख और महसूस कर रहे होते हैं।
इससे हम उसकी उलझन को, उसके दर्द को ज्यादा करीब से समझ पाते हैं, भले ही हम उसके फैसलों से सहमत ना हों। ये पाठक को किरदार से जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है।
और प्रतीकवाद का इस्तेमाल भी बहुत खूब है,
सिम्बोलिज्म,
यानी चीजों का गहरा सांकेतिक मतलब होना।
हाँ, जैसे इलाहाबाद शहर, गंगा यमुना का संगम, मौसम का बदलना, ये सब कहानी के मूड को, किरदारों की भावनाओं को दिखाते हैं।
और सबसे बड़ा प्रतीक तो खुद सुधा है, जिसे चंदर देवता बना देता है, उसके इंसान होने को भूल जाता है
और यही त्रासदी की जड़ बन जाता है।
और विडंबना, आयरनी, जो कहा जा रहा है या जो दिख रहा है, असल मतलब उसका बिल्कुल उल्टा है।
टाइटल ही सबसे बड़ी विडंबना है, गुनाहों का देवता।
बिल्कुल, जो इंसान पवित्रता की, भक्ति की चोटी पर पहुंचना चाहता था, वही आखिर में गुनाहों का देवता बन जाता है। पुण्य कमाने निकला था, पाप के दलदल में फंस गया।
उपन्यास खत्म करने के बाद मन पर एक अजीब सी उदासी, एक खलिश सी रह जाती है। कहानी में कोई सीधा साधा विलन नहीं है।
नहीं, कोई नहीं। त्रासदी किसी बुरे इंसान की वजह से नहीं होती, बल्कि एक अच्छे, नेक इरादे वाले, लेकिन भटके हुए इंसान की समझ की भूल से होती है। और ये चीज कहानी को और ज्यादा रियल, और ज्यादा जटिल बना देती है।
पढ़ने वाले के मन में भी चंद्र के लिए मिले जुले भाव आते हैं। गुस्सा भी आता है, झुंझलाहट भी होती है, पर कहीं ना कहीं उसके टूटने पर अफसोस भी होता है।
और सुधा, ओ सुधा के लिए तो बस दिल दुखता है। उसकी वो खामोश पीड़ा, वो घुटन पाठक को अंदर तक महसूस होती है।
और शायद इसीलिए ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक है, इतना रेलेवेंट है। ये हमें प्रेम, पछतावे, जिंदगी के उन फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता।
हाँ, ये सवाल छोड़ झाटन है कि क्या हम इंसान से प्यार करते हैं, या उस इंसान के बारे में जो ख्याल हमने अपने मन में बना रखा है उससे। कहीं हम भी तो अपने चाहने वालों पर अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डाल देते।
ये एक तरह की चेतावनी भी है कि अपने बौद्धिक अहंकार या किसी ऊंचे आदर्श के नाम पर इंसानी भावनाओं, इंसानी रिश्तों की बलि देना कितना खतरनाक हो सकता है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है। प्रेम को सम्मान देना जरूरी है, पर उसे इतना ऊपर उठा देना कि वो इंसानी पहुंच से ही बाहर हो जाए, वो प्रेम नहीं, वो विनाश है।
तो शायद ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि किसी विचार को, किसी आदर्श को एक जीते जागते इंसान से ज्यादा अहमियत देना कितना भारी पड़ सकता है।
या यूं कहें कि ये भक्ति और विनाशकारी आदर्शवाद के बीच की उस बहुत महीन, बहुत खतरनाक लकीर को दिखाती है जहां पूजा ही विध्वंस बन जाती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।